तो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 13वां अध्याय के 46वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। मैत्रेय वाचा इति उपस्थीय मानसो मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांता उपाधत्ता वितावनिम्। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। तात्पर्य, भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा था। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे विशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर कर सकते हैं। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की ये शक्तियाँ किस तरह कार्य करती हैं। मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटनाएं संभव होती हैं, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्यों के विषय में कल्पना करने में अशक्त है, इसलिए वे अचिंत्य कहलाते हैं। किंतु तो भी कूप मंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम गराति स्वपरार्थिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तं सजीवम सार्वगतं सारभूतम् परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री शांतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणवामि। हरिप्रियमाच्छाकल्पितेभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो बात चल रही थी कि जब मनु जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप पृथ्वी पर रहो और प्रजा का जो है सृष्टि और पालन करो। तो मनु जी ने कहा पृथ्वी है कहाँ पर? तो ब्रह्मा जी ने देखा तो पृथ्वी दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो गर्भोदक जो समुद्र है उसकी तलहटी में रखी हुई थी पृथ्वी। सो उन्होंने कहा कि ये मैं तो निकाल नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने इमीजिएटली भगवान की शरण ली और भगवान से प्रे की कि आप प्लीज़ हमारी रक्षा करें, इस समस्या का समाधान करें, है ना। सो ये जो बात है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है एक्चुअली में, है ना। भागवतम के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है कि प्रॉब्लम सबको है। प्रॉब्लम ऊपर के लोगों में भी है, नीचे के लोगों में भी है, लेकिन फर्क इतना है कि जब जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है, जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो कृष्ण या गुरु की शरण लेते हैं, जबकि जो इंटेलिजेंट नहीं है वो अपनी अकल से समस्या का निदान करने में लगे रहते हैं, उसमें विफल हो जाते हैं। और कृष्णा ऐसे लोगों की बात करते हैं भगवद्गीता में, मोघाशा मोघ कर्म, कि आप अगर भगवान की गुरु की शरण नहीं लेंगे तो आपके सारी आशाएं, सारे प्रयास सब विफल हो जाएंगे, है ना, वो फलीभूत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कर्माणि एवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका जो अधिकार है, आपका अधिकार कर्म पर है, आपका अधिकार फल पर नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने ये कर्म किया तो इसका मुझे फल यही वाला मिलेगा, ये कुछ निश्चित नहीं है, गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फल है, फल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। प्रभुपाद इसकी बात करते हैं कि कई बार दो व्यक्ति हैं, बीमार हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, और एक व्यक्ति बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। तो जो अमीर व्यक्ति है उसको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज दी, बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, फिर भी मर जाता है। जबकि दूसरा जो मरीज है वो होपलेस कंडीशन होगी, फिर भी ठीक हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? वो क्यों मर गया और वो क्यों ठीक हो गया? क्योंकि ये भगवत इच्छा थी, भगवान की इच्छा ऐसी थी कि एक ठीक हो जाए और एक मर जाए। तो प्रयास महत्वपूर्ण है लेकिन 100% नहीं है। प्रयास की कुछ प्रतिशत महत्व है, मुख्य रूप से जो प्रधानता है वो भगवत कृपा की प्रधानता है, है ना। इस तीसरे स्कंद का जो मैं रेफरेंस दे रहा था 17वें अध्याय के पहले श्लोक में, प्रभुपाद प्रपोर्ट में उसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की या गुरु की शरण लेता है वो इंटेलिजेंट कहलाता है। ये बुद्धिमत्ता का परिचायक है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत भगवान की शरण लो। जिस प्रकार आप अगर ब्रजवासियों को देखो, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होगी भगवान की शरण लेंगे, है ना। जब गायों ने वो तालाब का जहरीला पानी पिया, मर गई, तो तुरंत जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कृष्ण को बुलाया, कृष्ण प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। जंगल में आग लग गई तो उन्होंने बोला कृष्ण हमारी रक्षा करो। इंद्र ने संवर्तक बादल भेजकर चारों तरफ बाढ़ लेके आ गए, सब तहस नहस कर दिया, तो किसके पास गए ब्रजवासी? कृष्ण के पास गए, कृष्ण प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। ग्वाल बाल वन में जाते थे, अघासुर बगासुर, वो तो ऐसे अपना मुंह खोल के बैठे थे, एक जो उसकी चोंच थी एक सिरा जमीन पर और एक आसमान में, दिखाई नहीं दे रही थी। और ऐसा नहीं ग्वाल बालों को दिख नहीं रहा था कि ये कोई विशाल काय पक्षी है, लेकिन उनके साथ कृष्ण है। कुछ घबराने की बात नहीं है, चेक करते हैं अंदर जाके क्या होने वाला है, अंदर घुस गए और कृष्ण ने उनकी रक्षा की, है ना। भगवान की शरण लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इंटेलिजेंस तो है लेकिन इसमें जब तक श्रद्धा नहीं होगी भगवान की शरण नहीं ले सकते, नहीं। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, नहीं। आप मोबाइल फ़ोन देखो, पता नहीं कैसे बना दिया, कोई व्यक्ति एक नंबर है, पूरे संसार में कहीं भी घूम ले वही नंबर पर फ़ोन करो उसको मिल जाएगा। बहुत ही एरोप्लेन्स हैं, कैसे उन्होंने बना दिया। आवाज़ आ रही है आप लोग? सो क्या करें, अभी ठीक है, अभी ठीक है। नहीं अभी इको नहीं आ रही, अभी भी आ रही है। अच्छा, जैसे एरोप्लेन बना दिए वैज्ञानिकों ने, पता नहीं कैसे एरोडायनामिक क्या साइंस लगाई, मतलब 500 लोगों को 400 लोगों को लेके प्लेन हवा में उड़ जाता है ना, हजारों किलो
जो कार्गो है वो लेके हवा में उड़ जाता है, कुछ घंटों में कहीं से कहीं पहुंचा देता है, नहीं? लेकिन इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद वो भगवान की शरण नहीं ले पाते, नहीं? भगवान की शरण लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक श्रद्धा है। और श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा आएगी जब कोई अज्ञात सुकृति मिलेगी, है ना? अज्ञात सुकृति का मतलब है जब कोई भगवान का भक्त आपको स्पर्श करेगा, आपसे बात करेगा, आपको कुछ भगवत प्रसाद देगा, कुछ भगवान की शिक्षा या भगवान की कथा सुनाने वाली कुछ ग्रंथ आपको पकड़ाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया कि आप फूड फॉर लाइफ चलाओ, आप खिचड़ी प्रसाद वितरण करो, नहीं आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। आपने किसी को बुक पकड़ाई, उसने बुक पकड़ के नहीं ली, वापस कर दी, तो भी किताब उसने हाथ में पकड़ी करके उसको सुकृति मिलेगी। और कभी आगे जाकर कुछ वर्षों के बाद या कुछ जन्मों के बाद उसको भगवान की भक्ति में लगने का अवसर मिलेगा। उसके दिमाग में कुछ भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और कुछ कारण नहीं है, है ना? हम सोचे कि कुछ और कारण आ जाएगा, कुछ और कारण नहीं है, है ना? एकमात्र यही कारण है। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि हम लोग भजनानंदी नहीं है, हम लोग गोष्ठानंदी है। हम लोग जो भगवान की कृपा हमें मिली है, हम उसको दूसरे लोगों के पास लेके जाएंगे, दूसरे लोगों को भी हम भगवान की कृपा वितरण करेंगे, जिससे कभी ना कभी वो भक्ति में जुड़े। ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए कि आपने किसी को किताब दी, किताब लेते बोला अच्छा वो माला भी दे दो, 16 माला करनी है, बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। फिर जो भगवान भराए वो प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नासिका से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका में बोलते हैं कि क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भगवान कहीं भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने कहा अगर सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व दिशा जो है वो सूर्य की माता है ना? ऐसा नहीं है। उन्होंने चुनाव कर लिया कि चलो हम पूर्व दिशा से उदित होंगे। सो इसी प्रकार भगवान ने ये चुनाव किया कि चलो ब्रह्मा जी की नासिका से मैं प्रकट हो जाता हूँ। हाँ, और भगवान ने जंप लगाई पानी में, गर्भोदक समुद्र में, और पृथ्वी को लेके बाहर आ गए। तो भगवान के जो कंधे पर बाल थे, हाँ, शरीर पर बाल थे, जब भगवान ने थोड़ा सा हिले तो वो पानी नीचे गिरा। तो वो पानी नीचे कौन खड़े थे? नीचे ब्रह्मा जी और सारे ऋषि खड़े थे। तो पानी के छींटे उन पर पड़े। तो उनको घृणा नहीं आई कि सुअर के शरीर से पानी छूकर हमारे पे गिरा। तो उन्होंने ये प्रार्थना की सब ऋषियों ने कि हमारा कल्याण हो गया, हम पवित्र हो गए, कि आपके शरीर का स्पर्श करके जल हमारे ऊपर गिरा है, तो उस जल के स्पर्श से हम पवित्र हो गए। क्यों? क्योंकि गंगा का जल सबसे पवित्र माना जाता है। वो पवित्र इसलिए है क्योंकि वो आपके चरण कमल को छू के निकली है। गंगा लोग, पूरा संसार, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि गंगा पवित्र है क्योंकि शिवजी ने सिर पर धारण किया। अरे शिवजी ने सिर पर धारण इसलिए किया है क्योंकि भगवान का, भगवान की चरणामृत है। भगवान का चरणामृत समझ के अपने शीश पर धारण किया हुआ है शिव जी ने। तो ये शिव जी की वैष्णवता है। हम लोग अगर शिव जी की जय जयकार बोलते हैं, जो कि बोलना ही चाहिए, इसमें कुछ शक नहीं है, भागवतम के 12वें स्कंद में लिखा हुआ वैष्णव नाम यथाशंभो, शिव जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। लेकिन जिसके प्रताप से शिव जी की जय जयकार हो रही है उसको कैसे भूल जाए। लोग दुर्गा देवी की जय जयकार बोल रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से दुर्गा देवी की उपासना हो रही है। दशम स्कंद में आप पढ़ें, भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया बहिरंगा शक्ति को कि तुम्हारी उपासना होगी, तुम्हारी पूजा होगी, और वो नाम भी लिखे हैं। हाँ, भगवान ने नाम भी दिए कि इन नामों से तुम्हारी पूजा की जाएगी। उनकी उपासना में पूरा संसार लगा हुआ है। अरे ये तो देख लो किसके आशीर्वाद से ये सब काम हो रहा है, उनकी डायरेक्ट प्रत्यक्ष उनकी उपासना क्यों नहीं कर रहे। नहीं, लोग उपासना कर रहे हैं वो खाटू श्याम की, नहीं बरबरीक जी की उपासना कर रहे हैं। अरे उनको उपासना के योग्य भगवान ने बनाया, उनकी उपासना कर लो भैया, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, सो भगवान के चरण का स्पर्श हो गया तो वो वस्तु पूजनीय हो गई, वो वस्तु परम पवित्र हो गई। तो सब ऋषियों ने बहुत ही हर्ष का अनुभव किया कि भगवान के शरीर का स्पर्श करके जो जल है उन्होंने, जल ने हमें पवित्र बनाया। सो यहाँ पर अब मैत्रेय जी कह रहे हैं कि भगवान के खुरों का स्पर्श हुआ पृथ्वी को, हाँ, और भगवान ने उसको निवेशित कर दिया, अपनी शक्ति से निवेशित कर दिया ताकि वो जल पर स्थापित हो जाए। वही पृथ्वी है और वही जल है। पहले जल पृथ्वी का भार नहीं सहन कर पा रहा था और पृथ्वी डूब गई, लेकिन भगवान ने जब उसको अपनी शक्ति से निवेशित कर दिया तो वही पृथ्वी जल पर तैरना शुरू हो गई। लोग बोले क्या मजाक चल रहा है, ये क्या हो रहा है, आखिर पृथ्वी को उठाया कैसे जा सकता है, कौन है इसमें इतनी ताकत जो पृथ्वी को उठाए। लेकिन ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, यस्य एक निश्वसित कालम अथवलंब्य जीवंति लोम विलिजा जगदंड नाथा विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान के जो एक श्वास के छोड़ने और श्वास के लेने तक सारे जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो उनका जीवन काल उतना ही है। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के रोम कूपों से ब्रह्मांड जो हैं वो निकलते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर असंख्य, हर एक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं और पृथ्वी उसमें से एक ग्रह है। तो जिनके रोम कूपों से पूरे ब्रह्मांड निस्सृत होते हैं, निकलते हैं, उन्होंने एक ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह को उठा के जल पर निवेशित कर दिया, तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें कोई बड़ी आश्चर्यजनक घटना नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति ये काम करे तो बोला जा सकता है कि कमाल कर दिया इसने, लेकिन भगवान के लिए ऐसा करना कुछ इतनी आश्चर्यजनक घटना नहीं है, भगवान के लिए बहुत ही साधारण बात है। भगवान ने पृथ्वी और सूर्य में बिल्कुल एग्जैक्ट उतना दूरी बना के रखी है जितनी आवश्यक थी। अगर थोड़ा सा भी एक गज एक मीटर आगे पीछे होती, अगर आगे होती तो जीवन की संभावना खत्म हो जाती, जल जाते सारे। अगर थोड़ा सा पीछे होती 1% भी तो बर्फ जम जाती, जीवन की संभावना खत्म हो जाती। भगवान ने एग्जैक्ट, सब साइंटिस्ट ये तो बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण से सारी चीज चल रही है। हाँ, ये तो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी है आई कहाँ से, ये तो बताओ। गुरुत्वाकर्षण बहुत अच्छी बात है, समझ गए गुरुत्वाकर्षण से हो रहा है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण आया कहाँ से। साइंटिस्ट ये तो बता रहे हैं कि पानी H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन भैया इतनी मात्रा में आया कैसे और इतनी मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया किसने, और मिलाया भी इस तरह से कि विरोधी गुण उत्पन्न हो गया। विरोधी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैसें हैं, और भगवान ने उसको मिला के ऐसा विरोधी गुण उत्पन्न कर दिया जहां पर भी आग लगी है H2O को डाल दो आग बुझ जाएगी। मैं कहीं पे एक किसी साइंटिस्ट की बात सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि जो सूर्य है, सूर्य जो शक्ति है अपनी कहाँ से ले रहा है, लगातार जलता जा रहा है सूर्य, तो शक्ति कहाँ से ले रहा है सूर्य, आपको पता है? सूर्य वो शक्ति ले रहा है पानी से, पानी सोख लेता है सूर्य और वो पानी पानी को जो है वो डिवाइड कर देता है, डीसिंथेसाइज कर देता है उसको, हाइड्रोजन अलग कर देता है और ऑक्सीजन अलग कर देता है और वो जलना शुरू हो जाती है। नहीं, भगवान ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया। लोग साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चलो सूर्य ने वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, इसीलिए उसको ऊर्जा मिल रही है, जले जा रहा है। अरे सूर्य के पास वो शक्ति कहाँ से आई? अगर ग्रेविटी है तो हर चीज नीचे जाने चाहिए, पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है? आप जो नारियल पीते हो, नारियल पानी, पानी ऊपर चढ़ रहा है ना, वो गुरुत्वाकर्षण को उसका एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कैसे खड़ी हो गई? यहां पर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो कूप मंडूक वैज्ञानिक हैं वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते चीजों को, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो अचिंत्य है। तो अचिंत्य शक्ति का मतलब क्या है? क्या अचिंत्य शक्ति का मतलब यह है कि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता? क्या भगवान को जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान को नहीं जाना जा सकता। अगर भगवान को जाना ही नहीं जा सकता तो फिर इतने सारे शास्त्र देने की क्या जरूरत है? भगवान ने भगवत गीता क्यों बोली? वेद व्यास ने इतने शास्त्र क्यों लिखे? वेद क्यों है? वेद जो है, सारे वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना है। अगर भगवान को जाना ही नहीं जा सकता तो फिर आखिर वेद जो है वो प्रकट ही क्यों हुए? भगवान ने वेद प्रकट क्यों किए? भगवान ने भगवत गीता क्यों बोली? आखिर इन प्रश्नों के आखिर क्या उत्तर है? तो अचिंत्य जो शब्द है, अचिंत्य शब्द का अर्थ यह है कि इसके दो अर्थ हैं, कि भगवान को जो अभक्त हैं वो कभी नहीं जान सकते। हाँ, और भगवान भगवत गीता में कह भी रहे हैं, ना हम प्रकाशा सर्वस्य, मैं सबको नहीं, सब मुझे नहीं जान सकते, योग माया समावृता, क्योंकि योग माया से मैं आवृत हूँ, मैं ढका हुआ हूँ, हर कोई मुझे नहीं जान सकता। और दूसरा जो अर्थ है अचिंत्य का, कि भगवान को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, है ना? कोई व्यक्ति ये बोले कि हम भगवान को पूरी तरह से समझ लेंगे, वो संभव नहीं है। इसके पिछले श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो जो भी व्यक्ति, बल्कि ऋषि मुनि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से जो समझने का प्रयास कर रहा है वो मूर्ख है, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझा ही नहीं जा सकता। भगवान स्वयं अपने आप को, अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। भगवान कई बार ये सोचने में असमर्थ हो जाते हैं कि मुझे जो सुख मिल रहा है, मेरे भक्तों को मुझसे ज्यादा सुख कैसे मिल रहा है मेरी सेवा करके। उस सुख का अनुभव करने के लिए भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में अवतरित हो जाते हैं। भगवान एक भक्त के रूप में अवतरित हो गए, ये बहुत ही अचिंत्य, बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत विषय है, कि अपने संग से कैसे भक्त को इतना सुख मिल रहा है, उसको समझने के लिए वो एक भक्त के रूप में उनको अवतरित होना पड़ गया। नहीं, सो भगवान को अगर समझने की कुछ संभावना है तो वो केवल भक्ति के माध्यम से है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अनंतरम। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, मुझे आप तत्व से जान सकते हो, जैसा मैं हूँ आप मुझे जान सकते हो, किस प्रकार, भक्ति के माध्यम से। और ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, भगवान अप्राप्य हैं, भगवान दुर्लभ हैं, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान को भक्ति द्वारा, भगवान अदुर्लभ, अदुर्लभ मतलब सुलभ, भगवान सुलभ हो जाते हैं, भगवान को अनायास प्राप्त किया जा सकता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से मिलने का बहुत प्रयास किया महाराज प्रताप रुद्र ने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, मैं नहीं मिलता राजा से। राजा के बेटे से भी मिल लिया, अपना बहिर्वास उसको प्रदान कर दिया, लेकिन राजा से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन भक्तों की इच्छा थी, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, इन सब की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा, अहेतु की कृपा प्रदान करें महाराज प्रताप रुद्र को। सो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई तो महाराज प्रताप रुद्र ने क्या किया, जगन्नाथ जी के सामने, रथ के सामने उन्होंने झाड़ू से सफाई की, ताकि जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इस कारण से कई लोगों ने उनको जमादार भी बोलना शुरू कर दिया। जैसे दक्षिण भारत के राजा थे, उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को, महाराज प्रताप रुद्र ने उसको संदेशा भेजा था दक्षिण भारत के राजा को कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो उस राजा ने बोला, मैं जमादार से विवाह नहीं करता अपनी लड़की का। सो क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र ने भगवान के भक्तों की सेवा की झाड़ू लगाकर, इस कारण से चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को वो कृपा की उन पर, जो कृपा अन्य कोई उसका अनुभव नहीं कर पाया है ना। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब तीन रथ चलते हैं है ना, सबसे आगे बलदेव जी चलते हैं, बीच में सुभद्रा महारानी और सबसे पीछे भगवान कृष्ण, तो ये जो तीनों रथ हैं, तीनों रथों के आसपास चैतन्य महाप्रभु सात टोलियां बनाते थे और वो टोलियों जो कीर्तन करने के लिए, और हरेक टोली में मृदंग प्लेयर होते थे और हरेक का एक कीर्तन का लीडर होता था जो और सब लोग बहुत ही जोर से मिलके सारे सातों टोलियों में कीर्तन चलता था। चैतन्य महाप्रभु हर टोली में जाकर नृत्य करते थे जैसे किसी में स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, किसी में कोई और भक्त जो है वो कीर्तन कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। तो हर एक टोली ये सोचती थी कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमारी टोली में नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ ही हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही विलक्षण कृपा की प्रताप रुद्र पर, कि प्रताप रुद्र ये देख पाया कि ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु एक टोली में सारा टाइम है, चैतन्य महाप्रभु सातों टोलियों में हमेशा विद्यमान थे। महाराज प्रताप रुद्र सिर्फ दो व्यक्ति इस चीज को देख पा रहे थे, महाराज प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य। महाराज प्रताप रुद्र ये देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु एक ही समय में सारी टोलियों में, सातों टोलियों में नृत्य कर रहे हैं। ये और भगवान के लिए कुछ बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने 16,108 रूपों में अपना विस्तार किया और इकट्ठे सभी रानियों के साथ द्वारका में भगवान रह रहे थे, है ना। सो कोई सोचे कि ऐसा कैसे संभव है, तो भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है। भगवान अजन्म है फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, है ना। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या भगवान अजन्म है या भगवान जन्म लेते हैं, क्या भगवान, मायावादी बोलते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं इसका मतलब परिवर्तन हो गया, नहीं, माया के अधीन हो गए, इसीलिए उनको मायावादी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मायावादी नहीं दे सकते कि क्या भगवान अजन्म है या भगवान जन्म लेते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान अजन्म है, हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का अगर वास्तविक परिचय है, भगवान का परिचय है कि भगवान अजन्मा, भगवान यशोदा नंदन है। भगवान अजन्मा है लेकिन फिर भी भगवान यशोदा नंदन है, ये भगवान का पूर्ण परिचय है। भागवतम के इसी श्लोक में बताया कि भगवान स्वयं काल है, भगवान से सब, पूरी सृष्टि भगवान से भयभीत है, लेकिन भगवान डर के भाग जाते हैं, डर के भगवान भाग जाते हैं और द्वारका में एक किला बनाकर भगवान वहां पर शरण लेते हैं। नहीं, कितनी अद्भुत बात है, भगवान कण कण में विराजमान है लेकिन फिर भी भगवान अपने धाम में हमेशा विराजते रहते हैं। इन सब बातों को भगवान की कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा के बिना नहीं समझा जा सकता। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करने का जो तरीका क्या है, क्यों भगवान एक पे कृपा कर रहे हैं दूसरे पे कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान पक्षपाती हैं। भगवान कृपा करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम, आप जैसे मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं वैसे आपके साथ व्यवहार करूंगा। अगर आप मेरी कृपा प्राप्त करने की आकांक्षा, इच्छा रखते हो तो मैं आपको अपनी कृपा प्रदान करूंगा। ददामि बुद्धि योगम, मैं आपको बुद्धि योग प्रदान करूंगा। उसका कसौटी क्या है, किसको भगवान कृपा प्राप्त करेंगे, अनन्य चिंतयंतो मां, जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा में लगा होगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और एकमात्र उपाय है भगवान की सेवा में लगना। अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, मंदिर की सफाई करके, जप करके, भगवान की शिक्षाएं पढ़ के, भगवान के भक्तों की शरण लेके, तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान को समझ पाना सुलभ हो जाएगा। अगर हम सोचें कि हम अपनी शक्ति से घर में बैठकर बिना कुछ किए भगवत गीता को अपने हिसाब से पढ़ के हम भगवान को समझ पाएंगे, वो असंभव है। बहु योनी ज्योति करे श्रवण कीर्तन तो भी तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, हम करोड़ों जन्म अपने प्रयास कर लें लेकिन जब तक हम पर भगवत कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी, जब तक हम, हमारी श्रद्धा भगवत सेवा में जागृत नहीं होगी, जब तक हम भगवान की सेवा करने के लिए हमारी रुचि जब तक जागृत नहीं होगी, भगवान को नहीं समझा जा सकता। हरे कृष्ण। आपका